ओम शांति। बाबा, हम बच्चों को हर रोज कितनी सुंदर बातें समझाते हैं और इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाते हुए जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया। हर एक ब्राह्मण दुनिया भर में अपने भाग्य को देख करके निरंतर हर्षाता होगा कि बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है, अनमोल है, उसका जैसा कोई युग में जीवन नहीं। इसीलिए तो ब्राह्मण जन्म को चोटी बताई गई है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ ये जीवन है। तो ऐसे ही कुछ समय से मन के अंदर कुछ विचार चल रहे थे और वो विचार मैं आज आप सबके सामने रखना चाहती हूं कि ये तो हम सभी जानते हैं कि ये ब्राह्मण जन्म कल्प का पहला जन्म कहेंगे या अंतिम जन्म कहेंगे, क्या कहेंगे? पहला जन्म है ये कि अंतिम जन्म है? पहला जन्म है ना। तो पहला जन्म जब होता है तो उसमें हमारा खाता जो है नया खुलता है, चोपड़ा नया खुलता है या पुराना चला आता है, क्या कहेंगे? पुराना चला आएगा? नहीं। दिवाली में भी जब लोग नए साल पर नया चोपड़ा आरंभ करते हैं तो पुराना सारा हिसाब किताब क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, वो चोपड़ा बंद कर देते हैं और नया चोपड़ा शुरू करते हैं। उसमें जितने भी लोगों से कोई ना कोई उधारी आदि बाकी होती है उसको ले दे करके पूरा कर देते हैं, तभी चोपड़ा समाप्त होता है। तो ठीक इसी तरह कल्प का ये पहला जन्म अगर है तो पुराना कोई भी खाता इस जन्म में हो सकता है? हो सकता है। और इसीलिए ये विचार चला कि ब्राह्मण जन्म किसका होता है जिसके पुराने सारे अकाउंट समाप्त हो गए होंगे वही ब्राह्मण बनता है। जब तक पुराना समाप्त नहीं हुआ है आप उनको कितना भी ज्ञान सुनाने का प्रयत्न करो, चाहे वो कितनी भी भक्ति भाव वाली आत्मा है तो भी वो ज्ञान समझ नहीं पाते हैं। ये हरेक जानते हैं, अनुभव है हरेक को। कई ऐसे भी होंगे कि भाई आपको बचपन की अवस्था में मिला था ज्ञान, लेकिन उस समय शायद पार्टी नहीं था, कुमार अवस्था में, कुमारी अवस्था में ज्ञान मिला था लेकिन उसके बाद उस समय समझ में नहीं आया, चले गए दुनिया के अंदर, परिवार बनाया और अब ज्ञान में आए। तो लगता है कि पहले क्यों इतनी बात स्पष्ट समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जिसका हिसाब किताब बाकी है पुरानी दुनिया के अंदर वो ब्राह्मण बन नहीं सकता है। ब्राह्मण बना माना उसका सारा पुराना खाता समाप्त हुआ, वो चोपड़ा क्लोज्ड हो गया, तब जाकर के वो ब्राह्मण बनता है। इसलिए ये फर्स्ट जन्म है, सबसे श्रेष्ठ जन्म है। तो कई बार फिर सवाल उठता है कि फिर ब्राह्मण जन्म में जो कुछ बातें आती है परिस्थितियों के रूप में, हिसाब किताब के रूप में उसको क्या कहेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, जिसको हिसाब किताब अब तक हमारा हम समझते रहे, वास्तव में हिसाब किताब तो है ही नहीं, वो समाप्त तो हो गया तब ब्राह्मण बने। लेकिन ये जो कुछ भी ब्राह्मण जन्म में होता है ये परीक्षाएं हैं, एक एक बात की परीक्षा हमको देनी ही पड़ती है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जो लक्ष्य दिया है कि बच्चे सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हम बनने वाले हैं भविष्य में जाकर के। अगर वो बनना है तो मुझे कैसे पता चले कि मेरे अंदर कितने गुण आए, कितनी शक्तियां आई, मेरी सारी मर्यादा संपन्न हम है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। जब तक एक एक बात का पेपर नहीं देंगे, भाई मुझे कैसे पता चले मेरे अंदर धैर्यता कितनी है, सहनशीलता कितनी है, मधुरता कितनी है, तो हर एक बात का पेपर तो देना पड़ेगा और अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हाँ ये गुण है। तो हर गुण का पेपर आएगा या नहीं आएगा, तभी तो पता चले हाँ हम पास है या फेल है। अगर फेल होंगे तो दोबारा वो परीक्षा पास करनी पड़ती है। जब तक हम सर्वगुण संपन्न नहीं बने, इसीलिए कई बार कई लोग कहते हैं ब्राह्मण बनने के बाद तो इतने पेपर आने लगे हैं, भक्ति मार्ग में भी इतने पेपर नहीं देने पड़े। अरे भक्ति मार्ग में लक्ष्य ही कहाँ था कि सर्वगुण संपन्न बनना है, सोले कला संपूर्ण बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, ये लक्ष्य ही कहाँ था। तो भक्ति मार्ग में तो पेपर आ ही नहीं सकता है। लेकिन जहां हमें ये बनना है तो हर बात का पेपर आएगा या नहीं आएगा। ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जो बाबा ने हमें लकीर खींच के दी है, वही तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। संपूर्ण निर्विकारी, तो वो पेपर आएगा या नहीं आएगा। नहीं तो मुझे पता ही कैसे चले कि मैं सत्युग में जाने के लिए क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं, उस पद के लिए 108 की माला के लिए क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे जब भी ये पेपर आता है तो ये पेपर को, परीक्षा को जब उसको परीक्षा के रूप में देखेंगे तो लगेगा ये पेपर टाइगर है, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, और उसको पास करना आसान हो जाएगा। अगर हिसाब किताब समझेंगे कि मेरा हिसाब किताब है, तो पुरुषार्थ करने की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हिसाब किताब के नाम से हमने उस बात को स्वीकार कर लिया तो फेल हो गए। मेरा हिसाब किताब क्या करे, मेरा हिसाब किताब है, तो फेल हो गए। लेकिन जब उसको परीक्षा समझेंगे तो परीक्षा समझने से पास होने की एक उत्साह, एक शक्ति अंदर में आ जाएगी कि मुझे पास होकर के दिखाना है, और पास हो जाते हैं। हिम्मत आ जाती है, हिम्मत होगी तो ही बाबा की मदद मिलेगी। तो परीक्षा समझेंगे तो हिम्मत आ जाएगी, हिसाब किताब समझेंगे तो हिम्मत समाप्त हो जाएगी, परीक्षा समझेंगे तो उत्साह आएगा, पास होने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, हिसाब किताब समझेंगे तो फेल होने की पूरी संभावना है, और इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। क्या करे मेरा हिसाब किताब। और उस समय कई बार व्यक्ति उदास भी हो जाता है कि मेरे ऐसे कौन से हिसाब किताब है, इतने हिसाब किताब, اسی لیے بابا کہتے ہیں حساب کتاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ حساب کتاب سارے سماپت ہوئے تب برہمن بنے۔ اب جو کچھ بھی آتا ہے یہ برہمن جیون کے اندر پیپر ہے، کیونکہ ہمیں سرو گن سمپن بننا، تو ہر گن کا، ہر شکتی کا، ہر بات کا پیپر ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ اور اس پیپر میں جب پاس ہوں گے نا تو ایسی خوشی ہوں گی۔ دادی گلزار ہمیشہ ہم بچوں کو کہتی ہے سدا خوش رہو، نرنتر خوشی میں رہو۔ یہ دادی کا جیسے ایک مہا منتر ہم سبھی کو ملتا ہے، نرنتر خوشی میں رہنے کے لیے بھی جب تک اس کو پیپر نہیں سمجھیں گے تب تک نرنتر خوشی ہماری رہے گی نہیں۔ اس لیے بابا ہم بچوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو تحفہ سمجھو، یہ تحفہ ہے جو پریکشا آئی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے۔ اور تحفہ اس کو کیوں سمجھنا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے، یہ کچھ پردان کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہمارے سرو گن سمپنتا کے اندر ایک ڈگری کو بڑھانے کے لیے آئی ہے، تو ہم سمپورنتا کی اور آگے قدم بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تبھی بابا ہمیشہ کہتے فالو برہما باپ، برہما باپ سمان بننا ہے۔ تو بابا نے بھی ہر بات کا پیپر دیا ہے، بابا نے کبھی نہیں سمجھا یہ میرا حساب کتاب ہے، بابا نے کبھی یہ مینٹالٹی ہی نہیں اپنائی۔ اس لیے آج سے ہم یہ مینٹالٹی کو چینج کریں کہ میرا حساب کتاب کوئی ہے ہی نہیں، ہر بات ایک پیپر ہے اور اس کو اس روپ میں ہی ہمیں پاس کرنا ہے۔ جب پاس کیسے کریں گے، پاس کرنے کی ودھی کیا ہے؟ ہر پیپر کو پاس کرنے کی ایک ودھی ہے اور اس ودھی سے اس کو پاس کرنا ہے۔ تو پاس کرنے کی ودھی بابا نے بتائی ہے، پاس کرنا ہے، پاس ہونا ہے، پاس رہنا ہے اور پاس وتھ آنر بننا ہے۔ کہ اس پیپر میں پاس وتھ آنر اگر ہمیں ہونا ہے تو اس کے لیے جب ہم یہ سمجھیں گے یہ پیپر ہے تو پاس کرنا ہے، اس پیپر میں مجھے پاس ہونا ہی ہے اور ہونے کے لیے بابا کے پاس رہنا ہے۔ نرنتر جب بابا کے پاس ہماری بدھی کا یوگ ہوں گا تو پاس کرنا آسان ہو جائے گا، اس میں پاس کوئی ہی پڑے ہیں۔ اس لیے بابا ہمیشہ ہم بچوں کو سمجھاتے پاس کوئی ہی پڑے ہیں، جب ہوئے پڑے ہیں یہ سمجھیں گے تو کبھی وہ بات کو دیکھتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں، اس پیپر کو دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں۔ اور اس طرح سے پاس وتھ آنر ہو کر کے دکھائیں گے۔ آج یہ پیپر ہر ایک کو پاس کرنا پڑا، چاہے وہ بابا ہو، مما ہو، دادیاں ہو، ہر ایک کو پاس کرنا پڑا ہے اور انہوں نے پاس کر کے دکھایا ہے پریکٹیکل کہ کیسے پاس کرنا ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل ہمیں سکھایا ہے۔ بابا کے سامنے کیا شاریرک باتیں نہیں آئی؟ شاریرک باتیں آئی، بابا کے شریر پر بھی آپریشن ہوا، بابا نے کبھی اس کو حساب کتاب نہیں سمجھا، بابا نے ہمیشہ کیا سمجھا؟ پیپر ہے۔ اور اس لیے آپریشن کے بعد بھی جب ڈاکٹر بابا سے ملنے گئے، ڈاکٹر پوچھے اس کے پہلے بابا نے پوچھا بچے ٹھیک ہو، ڈاکٹر کو تبھی تو آشچریہ لگا کہ کوئی پیشنٹ ہمیں پوچھے۔ تو یہ ہے پاس وتھ آنر کی نشانی، کہ جہاں پر رنچک ماتر بھی کہیں پر وہ درد کی ریکھا بابا کے چہرے پر نظر نہیں آئی، لیکن ڈاکٹر جب آتا ہے اور بابا سامنے سے پوچھتے ہو بچے ٹھیک ہو، تو وہ ڈاکٹر بھی آشچریہ چکت ہو جاتا ہے یہ کیسا پیشنٹ ہے۔ دوسرے پیشنٹ آتے کتنی کمپلینز ہوتی ہے ان کی، رات بھر نیند نہیں آئی، ایسا ہوا، اتنا درد ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، کتنی کمپلینز ہوتی ہے۔ اور یہ پیشنٹ ایسا ہے جو سامنے سے پوچھتا ہے تو اس کی منستھتی کتنی اونچی ہوں گی۔ تب وہ ڈاکٹر کو مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں، آپ کیسے ہو ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہو؟ مانا وہ شریر کا پیپر بابا کی منستھتی کو ایفیکٹ نہیں کر سکا، دکھ درد کا انوبھو نہیں کرا سکا۔ اور اسی لیے جب انتیم سمے بابا نے جب شریر چھوڑا، اس وقت بھی دادی نے جب بھوگ لگایا اور دادی نے بابا سے پوچھا کہ بچے جاننا چاہتے ہیں کہ انتیم سمے کیا چل رہا تھا اندر میں، تب بابا نے یہی کہا، کرم بھوگ کی کرم یوگ کے ساتھ ایک لڑائی تھی، اور اس لڑائی میں کرم بھوگ درد پہنچانے کا، درد کا انوبھو کرانا چاہتا تھا بابا کو، لیکن کرم یوگ کی شکتی ایسی تھی جو اس کے اوپر وجے ہو گئی اور کرم بھوگ کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے اور کرم یوگ وجے ہو گیا۔ وہ درد پہنچا نہیں سکا بابا کو۔ یعنی شریر کی بات بھی جب آتی ہے تب بھی ہم یہ نہ سمجھے یہ میرا حساب کتاب ہے، تبھی بھی اس کو پیپر ہی سمجھنا ہے، حساب کتاب تو ہے ہی نہیں ہمارا، ہر بات کا پیپر دینا ہے۔ اسی طرح مما کے جیون کا انوبھو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مما کو کینسر جیسی بیماری ہوئی، اب اس سے بڑی بیماری تو کوئی اس دنیا کے اندر ڈکلیئر ہے ہی نہیں، اور وہ مما کو ہوئی، اور اس سمے ہوئی جب اتنا سادھن کیمو تھراپی آدی نہیں تھا دنیا کے اندر، اس کی جانکاری بھی کسی کو نہیں تھی، تو اس بیماری کا درد کیسا ہوگا۔ لیکن انتیم دن بھی اگر مما باہر بیٹھ کر کے مسکراتے ہوئے انگور بانٹ سکتی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، میں سیوا نہیں کروں گی، یہ بابا کو جواب نہیں دیا۔ اور چہرے پر دادیاں سناتی ہیں، مما کے چہرے پر اس بیماری کے دکھ کی، درد کی ریکھا تک نہیں تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے جیت، پرکرتی جیت، شریر روپی پرکرتی کے اوپر سمپورن وجئی، یعنی پاس وتھ آنر کی نشانی۔ تبھی تو پاس ہو گیا، نمبر ون میں چلے گئے کہ کوئی بھی پرکار کا درد چہرے کے اوپر دکھائی نہیں دیا۔ انتیم دن تک جو سیوا کر سکتا ہے اس بیماری میں بھی یہ مما نے پرتیکش ہمیں بتایا کیسے کرنا ہوتا ہے، پرکرتی جیت کیسے بننا ہوتا ہے۔ جبکہ کوئی ایڈوانسمنٹس نہیں تھی اس سمے میڈیکل میں بھی، اس وقت وہ بیماری ہوئی تھی، پھر بھی پرکرتی جیت آتما کیسے بن گئی۔ اسی طرح بڑی دادی جی کو بھی دیکھا کہ بڑی دادی جی کو جب وینٹیلیٹر پر رکھتے تھے، بڑی دادی جی کو جب دیکھتے تھے تو کئی بھائی بہنیں ہم سے پوچھتے تھے، دادی کے ایسے کیسے حساب کتاب؟ ارے دادی کے حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ جب بھگوان نے بھری سبھا میں اناؤنس کر دیا تھا کہ دادی جی 95% پاس ہے، 95% بابا بھگوان ڈکلیئر کر دے سبھا کے بیچ میں کہ دادی جی 95% پاس ہے، اتنا مارکس کون دے سکتا ہے؟ تو اس کے حساب کتاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جب بھی وینٹیلیٹر پر تھی یا وینٹیلیٹر ہٹاتے بھی تھے دادی کا، اور کئی بار منی بہن جاتی تھی دادی کے سامنے اور دادی سے پوچھتی تھی، دادی جی کیسے ہو آپ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے اور سنی ہے کانوں سے کہ جب ایک دن منی بہن دادی جی کے سامنے گئے صبح میں اور پوچھا دادی جی کیسے ہو، دادی جی نے آنکھیں کھول کر کے اسی سمے منی بہن کو کہا، منی تیرے سے میں اچھی ہوں۔ بھاوارتھ रखिए कि ये शब्द व्यक्ति कब बोल सकता है, कितनी प्रकृति जीत आत्मा होंगी कि उसके सामने कैसा भी पेपर आए लेकिन वो पेपर उनकी मनस्थिति को डाउन नहीं कर सके। उस पेपर में कैसे पास हो जाती है दादी, प्रत्यक्ष देखा। हाँ, आंखें बंद करके रखती थी, जैसे अंदर में गुप्त तपस्या दादी की चल रही थी। और जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने कहा कि कर्म भोग की कर्म योग के साथ एक लड़ाई थी, वो दर्द पहुंचाने का अनुभव कराना चाहता था लेकिन कर्म योग की शक्ति ने उसके ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया। तभी तो भगवान ने अनाउंस किया कि 95% पास है दादी बड़ी सभा के अंदर। इसी तरह मुझे याद आता है कि दादी गुलजार को भी जब ऑपरेशन कराना था तो बाबा ने कभी नहीं कहा मुरलियों में कि ये उसका हिसाब किताब था, लेकिन बाबा ने हमेशा यही कहा। हॉस्पिटल में भी जब दादी जा रही थी तो बाबा ने यही कहा कि होली स्थल पर जा रही है, होली स्थल नाम दिया, हॉस्पिटल नहीं कहा। और उसमें एक नई सेवा समाई हुई थी, जिस सेवा को भी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि दादी के द्वारा कैसे एक डॉक्टर्स की नई सेवा का अध्याय आरंभ होता है। और इसीलिए जब डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अशोक मेहता ने जब दादी जी के ऊपर ऑपरेशन किया और दूसरे दिन जब दादी जी से वो पूछने गए कि दादी जी कैसा रहा, रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, दादी जी ने मुस्कुराते हुए उस वक्त यही कहा कि डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया, पता ही नहीं चला, कोई दर्द ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। तभी तो डॉक्टर के मन के अंदर आया कि आज दिन तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा, नहीं तो इतनी कंप्लेंट्स होती है पेशेंटों की कि हमें रात भर नींद नहीं आई, बहुत तकलीफ हुई, यहाँ दर्द हुआ, वहां दर्द हुआ, गैस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, कितनी बातें होती है। और ये पेशेंट को कंप्लेन ही नहीं है, तो मेडिटेशन से कैसे उन्होंने अपने प्रकृति को जीता है, तभी तो उन्होंने कोर्स किया। और उस कोर्स करने के बाद जैसे मेडिकल डॉक्टर्स की सेवा का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। इसीलिए बाबा ने कहा था उस वक्त, ये बीमारी तो एक निमित्त कारण थी एक नई सेवा का अध्याय आरंभ होने के लिए। और उसके बाद जिस तरह से बुद्धिजीवी लोगों की सेवा होने लगी यज्ञ के अंदर, एक ऐसा मोड़ आया, विंग्स की सेवा आरंभ होने लगी। विंग्स का जो पार्ट खुला है वो उसी से तो खुला है। भावार्थ ये कि बाबा ने कभी उसको हिसाब किताब का नाम नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी हिसाब किताब होता है, लेकिन वो पिछले कर्मों का हिसाब किताब नहीं हो सकता। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद जाने अनजाने पन में जो हमसे कर्म विकर्म हो जाते हैं, कोई पाप कर्म हो जाता है, ये नया हिसाब किताब इस जन्म में बनता है। और उस हिसाब किताब को यही चुकतू करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद तो सत्युग त्रेता में उसको कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जब सत्युग त्रेता में कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो हिसाब किताब जो इस जन्म में ब्राह्मण जन्म में किए हुए कर्म, पाप कर्म विकर्म जो जाने अनजाने पन में हो जाते हैं, कोई न कोई विकारों के अधीन हो करके, चाहे क्रोध के वश, रोभ के वश, जैसे बाबा कहते हैं, आलस्य के वश, ईर्ष्या के वश, जो छोटे मोटे, चलो पवित्रता की धारणा तो अपना लिए, लेकिन जो दूसरे विकार है अभी और उसके भी अंश है, हर एक व्यक्ति के अंदर कमजोरियां है, और उस कमजोरी के वश जो कर्म हो जाते हैं वो नए हिसाब किताब जो इस जन्म में हमने बनाया है, उसके बाद तो 20 जन्म हमारे सत्युग और त्रेता युग में है, तो वहां तो चुकतू नहीं होना है, इसीलिए उसको यही चुकतू करना पड़ता है। وہ حساب کتاب ہے. اگر کوئی حساب کتاب ہے بھی تو وہ اسی جنم کے کیے ہوئے کرم کا حساب جس کو بھوگنا پڑتا ہے, جانے انجانے میں کیے گئے کرم. اور کوئی اگر بڑے پاپ کرم ہو جاتے ہیں, کوئی بڑے روپ سے اگر ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا کسی کے ساتھ, اسی لیے بابا کی مرلیوں میں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ بچے اگر کوئی کرودھ کرتا ہے تو کرودھ کا جو بھوت ہے وہ بہت جلدی انفلوئنس میں لے آتا ہے. اگر کوئی کرودھ کرتا ہے تو اس سمے مکھ میں ملہرا ڈال دو, چپ رہو, بولو نہیں, آپ وہ حساب کتاب بنائے گا. اس لیے مکھ میں ملہرا ڈال دو, یہ بابا نے ودھی بتائی. وہاں تک کہ بابا نے ہمیں یہ بھی ودھی بتائی ہے کہ بچے اس جنم میں دنیا کی آتماؤں کے ساتھ پیسے کا لین دین کر کے حساب کتاب کو بڑھانا نہیں. وہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو شادی کرنی ہے کرنے دو, ہاں جہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو, باقی حساب کتاب بڑھاؤ نہیں, کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ جنم ہے, ان کا تو انتیم جنم ہے. تو انتیم جنم والوں کے ساتھ حساب کتاب اگر بنائیں گے تو وہ سنچت روپ میں, کئی ایسے کرم ہوتے ہیں جو سنچت ہو جاتے ہیں, یعنی آتما میں وہ کارمک اکاؤنٹ جو ہے جو اس جنم میں نہیں چکا سکے ہم, لیکن جو کرم نہیں چکا سکے تو وہ سنچت روپ میں آتما میں ایک سنسکار کے روپ میں مرج ہو جاتے ہیں. کرم کی گتی اتی گئی ہے اس لیے تو مرج ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کرم مرج ہو گیا تو وہ پھر کہاں چکتو کرنا پڑے گا, ستیوگ تریتا میں تو اس کو چکتو نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں تو دکھ کا نام نشان نہیں ہے. تو جیسے اس کی ایف ڈی بن گئی, اب جیسے کوئی پیسے ہم نے بینک میں رکھ دیا, ایف ڈی بنا دی, اب وہ جب چاہو تب آپ اس کو یہ کر لو, ہے نا. لیکن اکثر جب لوگ ایف ڈی بنا دیتے ہیں تو پانچ سال میں ڈبل ہو جاتا ہے. پانچ سال میں ڈبل ہوتا ہے نا شاید, ہاں کتنے سال میں ڈبل ہوتا ہے, ہاں آٹھ سال میں ڈبل ہوتا ہے. اچھا جو بھی ہو, ہمیں انوبھو نہیں ہے اس بات کا, لیکن جیسے ایف ڈی بنا دیا تو بھائی پانچ سال یا دس سال کے اندر جو ڈبل ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈبل مل جاتا ہے. تو یہ جو ہمارا سنچت کرم ہے جس کو ہم اس جنم میں نہیں چکاتے ہیں, تو اس کی جیسے ایف ڈی کریٹ ہو گئی, اور وہ ایف ڈی پھر کہاں چکتو کرنی پڑتی ہے, وہ ڈھائی ہزار سال کے بعد دواپر یوگ میں. تو آپ سوچو کتنا پدم گنا, اس لیے بابا کہتے ایک کا پدم گنا حساب سمجھو, ایک کا پدم گنا ہے. اور ایک کا پدم گنا مانا وہ جو ایف ڈی بن گئی, اب اگر دس سال میں بھی ڈبل ہوتی ہو تو ڈھائی ہزار سال میں اس کا انٹرسٹ کتنا ہوگا سوچو. اور وہ انٹرسٹ سہیت جب وہ کرم کی ایف ڈی وہاں کھلے گی دواپر کے بعد, اور اس سمے اس کی بھوگنا کا انوبھو ایسا ہوگا جیسے کہ دھرم راج پوری کی سزا ہے. اسی لیے ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جو راجائیں تھے, کئی ایسے نردوش لوگ تھے جن سے غلطی بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے کوئی اتنی بڑی, لیکن اس کے اوپر کوڑے برساتے تھے.
شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے, شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے. بنانی ہے شانتی کی شکتی سے, शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से।
इसीलिए हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले के जमाने में जो राजाएं थे, कई ऐसे निर्दोष लोग थे जिनसे गलती भी नहीं हुई होती है कोई इतनी बड़ी, लेकिन उसके ऊपर कोड़े बरसाते थे, चमड़ी उधेड़ते थे। अब ये कोड़े बरसाना, या जैसे हिटलर के समय गैस चैम्बर में तड़पा तड़पा के लोगों को मारा, इस तरह कई ऐसे राजाएं हो गए जिन्होंने कोड़े बरसा बरसा करके लोगों को इतना तड़पा तड़पा करके, उनको गुलाम बना करके, स्लेव्स बना करके, कितने जुलम उनके ऊपर डाए। अब ये कौन से कर्म का फल? कई लोग हमें पूछते हैं, द्वापर में जो आत्माएं आई है वो तो ऊपर से जो आई प्योर आई है, सत्युग त्रेता से जो उतरी है वो भी प्योर है, उनके भी कोई हिसाब किताब नहीं, फिर उनको ये सजा कहीं भोगना क्यों भोगनी पड़ी? वो FD जो खुलती है तो एक का पदम घुना, इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग की एक घड़ी का पदम घुना, समझो उस हिसाब को। चाहे अच्छे कर्म किया तो उसका भी पदम घुना, अगर कोई ऐसा FD बना दी तो वहां भी सुख की इतनी प्राप्ति होगी, द्वापर में भी। लेकिन अगर गलत कर्मों का हिसाब किताब बना भी दिया और जो यहां चुकतू नहीं कर पाए तो उसकी जो FD बनी तो एक का पदम गुना वहां चुकतू करना पड़ता है, और वो जो सजा होती है धर्मराजपुरी की सजाओं के मुआफिक होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय जो ट्रिब्यूनल बैठती है, वो अंतिम समय जो ट्रिब्यूनल बैठेगी तो वो ट्रिब्यूनल जो 8 रत्नों की जो होगी, बाबा मम्मा सहित और शिव बाबा सहित 9 रत्नों की जो ट्रिब्यूनल बैठती है, वो एक एक उसको ठप्पा मार देंगे कि हाँ ये कर्म का हिसाब ये है, ये कर्म का हिसाब। तो धर्मराजपुरी जैसी कोई पुरी नहीं है कि जहां जाकर के हमें सजा भोग करके प्योर बन करके फिर ऊपर जाना है, ये तो बाबा ने मना किया, धर्मराजपुरी की सजाएं भी यहीं काटनी पड़ेगी। और इसलिए इस जन्म में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कम दर्द दुख होगा और ज्ञान और योग की शक्ति से उसको कम भी कर पाएंगे। लेकिन अगर वो संचित रूप में मर्ज हो गई आत्मा के अंदर, तो आत्मा प्योर होकर के जाएगी ऊपर, भले सत्युग त्रेता के अंदर उसनी सतो प्रधानता न होने के कारण वहां नहीं भी आई, या दास दासी के रूप में वहां पर भी अगर आना पड़ा, लेकिन द्वापर युग में जो ये संचित कर्मों की FDs खुलेगी उसकी भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। और उस समय व्यक्ति सोचता है पता नहीं ये कौन से जन्म का मेरा हिसाब किताब है, लेकिन ये है एक का पदम गुना हिसाब। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को पिछले सीजन की मुरली में भी समय का महत्व बताते हुए हमेशा ये सतर्क करते रहे कि एक का पदम गुना हिसाब है, उसको समझो, क्योंकि कर्म से कोई भी छूट नहीं सकता है। चाहे अगर यहां भी छूट गया, कितने भी गलत काम करके अगर वो सोचता है कि मुझे किसी को पता ही नहीं और मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मुझे सजा मिल नहीं रही है, यहां भले नहीं मिल रही, वो FDs क्रिएट कर रहा है, उसकी सजा तो मिलेगी ही। कर्म से कभी भी कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सका है, ये 101% गारंटी है। और इसीलिए जब छूट नहीं सका है तो उसकी भोगना कितनी पदम गुना होकर के मिलेगी, इस कर्म के हिसाब को भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहां ऐसा कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट न करो, यहां कोई ऐसा कर्म का हिसाब किताब न बनाओ जो FDs बन जाए और जो द्वापर युग के बाद वो FDs खुले, और जितनी देरी से खुलती है उतना इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये अगर मंजूर है तो भले एफडी क्रिएट करो, है कि नहीं। तो कर्म की गति अति गुह्य है, इसलिए कहा कि हर एक के सामने पेपर आता है और पेपर में पास हो जाना या ऐसे कार्मिक अकाउंट को क्रिएट कर दिया तो उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। इसलिए उसको पेपर समझो, हिसाब किताब बनाओ नहीं उसमें, हिसाब किताब जितना बनाए उतनी ही भोगना का अनुभव करते हुए उसका सजा जैसी महसूसता या इस जन्म के अंतिम समय में होगी। और हो गई यहाँ तो बहुत अच्छी बात, क्लियर हो गया पवित्र होकर के, क्योंकि अगर सतयुग त्रेता में उसका अच्छा पद है तो यहाँ इसको क्लियर कर देंगे वो सजा के रूप की जैसे अनुभूति हो करके। लेकिन अगर नहीं हुई तो वो आत्माएं सतयुग त्रेता में नहीं या त्रेता के अंत तक की प्रजा यहाँ क्रिएट हो रही है, 33 करोड़ प्रजा यहाँ क्रिएट हो रही, तो इसलिए वो अंत तक आ जाएगी। और वो भी कोई ऊंच स्टेटस प्राप्त नहीं करेगी और उसके बाद द्वापर के बाद जो उसकी एफडीज खुलनी लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जब देखता है ऊपर से बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं और कितना परसेंटेज अपना है, इसलिए बाबा समय के हिसाब से हमें यही इशारा देते हैं कि अब पुरुषार्थ से भी उस स्थिति को प्राप्त करना मुश्किल है अंत तक, तो तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना हम तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, और तीव्र पुरुषार्थ में बाबा ने इसलिए कहा बच्चे कोई भी बात आए फुल स्टॉप लगा दो, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जितना चलाते हैं उतना हिसाब किताब को बढ़ाते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। ये बाबा बार बार पिछले सीजन की सारी मुरलियों को अगर स्टडी करेंगे तो हर मुरली के अंदर किसी न किसी रूप से व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने की बात आई है, बाबा ने कहा है। और इसलिए बाबा कहते बच्चे बिंदी लगा दो, समाप्त करो उस बात को व्यर्थ में चला चला करके, अपने मन के अंदर उस हिसाब किताब को बढ़ाओ नहीं। इसलिए बाबा ने उस समय ये बात कही थी कि एक का पदम गुना हिसाब समझो, कि जितना व्यर्थ संकल्प चलाते हैं उतना व्यर्थ संकल्प के आधार पर जो हिसाब हमारा क्रिएट हो जाता है उसकी भोगना क्या होगी। वो भोगना तो हमें भोगनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि ये इस जन्म का क्रिएट किया हुआ हिसाब है, तो अंतिम समय से पहले उसको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर कोई गाली भी देता है तो उसको शुभ भावना के फूल बरसाओ, शुभ भावना शुभ कामना का दान दो, उसको सहयोग दो, उसके प्रति रहम दृष्टि रखो कि ये आत्मा मजबूर है अपने संस्कार से, इसलिए उसको सहयोग दो शुभ भावना शुभ कामना का, क्योंकि आखिर भी ब्राह्मण परिवार अपना ही परिवार है। मेहनत कर रही हर आत्मा अपनी तरीके से, लेकिन क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा न होने के कारण वो आत्मा मजबूर हो जाती है अपने कमजोरी वाले संस्कार के, और इसलिए अकाउंट्स क्रिएट हो रहा है। तो उसको शुभ भावना का दान देना, दान तो दुनिया वाली आत्मा को देते हैं, लेकिन बाबा के ब्राह्मणों को सहयोग देना है। शब्द बाबा के है कि ब्राह्मण आत्माओं के प्रति शुभ भावना का सहयोग दो, शुभ कामना दो, उसको मनसा सेवा उसके लिए करो, सकाश दो उसको, ताकि वो उस कमजोरी से मुक्त हो जाए। आखिर भी अपने ही परिवार के सदस्य है, एक ही बाप के हम सभी बच्चे हैं, इसलिए उनको सकाश देना जरूरी है ताकि वो आत्मा भी उससे मुक्त हो जाए और हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार उसका न हो जो अकाउंट क्रिएट करने वाला बने। ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, इसीलिए बाबा कहते ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करो। जितना ज्ञान को हजम करते जाएंगे तो किसी ने कुछ कह दिया उस बात को फील नहीं करो, दुआएं दे दो, जानकी दादी हमेशा ये बात कहती है, ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की, दुआएं दे दो, दुआएं दे करके उसको भी मुक्त करो, उसको भी सहयोग दे दो उस बात को लेकर के। और जितना उसको दुआएं देंगे हमारा हिसाब किताब बनेगा नहीं, हम कर्मातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कर्मातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय शुभ भावना का दान करेंगे तो हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा और हम कर्मातीत अवस्था में आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक का पदम गुना हिसाब किताब से, इसलिए उसका उस आत्मा का दोष निकालते रहने से कि ये आत्मा ऐसी है, इसका पर चिंतन करने से, पर दर्शन, कमियों का दर्शन करने से, बाबा कहे उसके ऊपर पर उपकारी बन जाओ। जितना पर उपकारी बन जाएंगे, बिंदी लगाने का अभ्यास होगा, यही तीव्र पुरुषार्थ आपका कराएगा। और उसके बाद बाबा ने कहा निरंतर एक अभ्यास। बाबा हम बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं और ड्रिल इसलिए सिखाते हैं ताकि बहुत काल का ये अभ्यास हमारा डेवलप हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि हर घंटे ड्रिल करो, हर घंटे पर चाहे पांच स्वरूप की ड्रिल करो, साकारी, आकारी, निराकारी, बीज रूप स्थिति में जाने का। कई बार कई लोग पूछते हैं कि क्या चलो जाने अनजाने पन में जो हमारे हिसाब किताब बन गए उसको अगर हम यही चुकतू करना चाहते, वो एफडी खत्म करना चाहते तो क्या करें? तो उसके लिए एफडी इसको खत्म करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति, ज्वाला स्वरूप होकर उसको जला दो। अगर उसको जला देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए बीज रूप अवस्था में जितना आप ज्यादा रहने का अभ्यास करेंगे, ज्वाला स्वरूप स्थिति को आप जीवन के अंदर डेवलप करेंगे तो उस ज्वाला स्वरूप स्थिति से वो एफडीज को हम जला देंगे। तो ये तरीका भी बाबा ने हर बात का एक सॉल्यूशन दिया है कि या तो इतना पावरफुल योग करो के ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करते हुए ज्वाला स्वरूप स्थिति से उन एफडीज को, उन कार्मिक अकाउंट्स को हम जला दें। और जब उसको जला देंगे तब एकदम हल्कापन का अनुभव होगा, इतनी खुशी का अनुभव होगा और उसके बाद जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा आ गई तो नया अकाउंट हमारा क्रिएट नहीं होगा, मन एकदम हल्का हो जाएगा, योग अच्छी तरह से लगने लगेगा। अगर भारीपन का अनुभव है, योग नहीं लग रहा है तो इसका मतलब हमने शायद बहुत एफडीज बना दी, उसका वजन भारीपन आ गया है। जो बाबा की ये नई किताब बनी है अमृत वेले का महत्व की, उस अमृत वेले की किताब के अंदर एक जगह बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है, पता नहीं कौन से साल की मुरली की ये बात है, बाबा ने कहे है कि जब अमृत वेले नींद आती है, कई लोग कहते हैं कि नींद आता है हमको योग में बैठते ही एकदम नींद में चले जाते और झुटका खाने लगते, वो फ्रेशनेस जो पहले रहती थी वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा था कि कोई ना कोई कर्मों का बोझ ऐसा है जो बोझ आपको भारी कर देता है, जैसे भारी हो जाते हैं तो झुकना स्वाभाविक हो जाता है, नींद आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति के आधार से उसको जलाओ ताकि हल्के हो जाए और हल्के होकर के फिर आप वापस योग में उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर बातें ये अमृत वेले की किताब के अंदर है, बाबा ने विधियां बताई है कि किस तरह आप अपनी उस कमजोरी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। भावार्थ ये कि बाबा ने इतना खजाना हम बच्चों को दिया है और उस खजाने को लेकर के अगर अप्लाई करते चले हम अपने जीवन के अंदर तो हर बात का एक सॉल्यूशन है हमारे पास। इसलिए बाबा के कारण नहीं बताओ, फलाने ने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, कारण नहीं बताओ, उसने किया, बाबा भी जानता है कारण है, लेकिन आप निवारण स्वरूप बनो। हर बात का एक निवारण भी बाबा ने दिया हुआ है, तो आप निवारण स्वरूप बन जाओ। कारण भले कितने भी हो, बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है। पिछले सीजन की एक मुरली के अंदर बाबा ने स्पष्ट कह दिया था, बाबा भी जानता है कारण है, लेकिन बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है। आप निवारण स्वरूप बन जाओ, और जो निवारण आप अप्लाई कर सके, चाहे तीन बिंदियों का निवारण अप्लाई कर सके वो करो, चाहे अपनी ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति को बनाते हुए वो अप्लाई करो, जिस तरह से भी अप्लाई करके आप अपने अकाउंट को चुकतू कर दो, उसके बाद आप देखो बाबा की मदद आपको जरूर मिलेगी। आज इसीलिए जब सवेरे दादी जान के इतना जैसे फोर्सफुली कह रही थी कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, हिम्मत तो रख के देखो, आप एक कदम की हिम्मत तो बढ़ाओ फिर देखो बाबा की मदद कितनी मिलती है। और इतना जैसे अथॉरिटी होकर के दादी उस बात को समझाने का प्रयत्न कर रही थी हम सभी ब्राह्मणों को कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, देखो बाबा किस तरह मदद का अनुभव कराता है, क्योंकि बाबा अभी भी, बाबा ने एक मूल्य, अभी भी बाप के रूप में है, इसलिए बाबा अभी भी मदद कर सकता है। बाबा जब धर्मराज बन जाएगा उसके बाद बाबा भी मदद नहीं कर सकेगा, उस समय बाबा भी साक्षी हो जाएगा, फिर कितने भी छटपटाएंगे मदद के अनुभव के लिए, लेकिन उस समय नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब अपने कर्म की गुह्य गति को समझते हुए, ये फर्स्ट जन्म है तो फर्स्ट जन्म की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट जन्म कितना सुंदर होना चाहिए, देवताओं से भी श्रेष्ठ भगवान के साथ का जन्म है तो कितना सुंदर जीवन, कितना श्रेष्ठ जीवन हमारा है, उस क्वालिटी को कैसी बनानी चाहिए, पहले जन्म की क्वालिटी कैसी हो, ताकि हम सत्युग त्रेता में भी उस क्वालिटी का जीवन जी सके। तो ये जन्म की क्वालिटी पर अटेंशन देना है, ये जन्म की क्वालिटी पर, माना चाहे विचारों की क्वालिटी हो, चाहे शब्दों की क्वालिटी हो, व्यवहार की क्वालिटी हो, कर्म की क्वालिटी हो, बोलचाल की क्वालिटी हो, हर बात की क्वालिटी हमें बनानी है, और तब कहेंगे कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कहलाने के जैसे हकदार हैं। तो इसलिए ये जन्म की क्वालिटी हमारी इतनी सुंदर हो जिसके ऊपर हमें भी गर्व महसूस हो और भगवान को भी हमारे पर नाज हो, इतनी सुंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। आज जब दादियों को देखते, दादी प्रकाशमणि दादी को देखा, गुलजार दादी को अभी भी आप क्लास सुनेंगे देखेंगे, उनके जीवन की क्वालिटी कितनी सुंदर है, उनके लिए जैसे हर एक तरसता है कि एक सेकंड की दृष्टि मिल जाए, एक सेकंड जैसे दादी जी हमारे सामने खड़े हो जाए, ये एक अभिलाषा अंदर, क्यों, क्योंकि इतनी मैग्नेटिक पावर है उनके अंदर, वो मैग्नेटिक पावर, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी, ये ब्राह्मण जीवन को इतनी सुंदर क्वालिटी वाला बनाया है कि आज ऐसी मैग्नेटिक पावर उनके अंदर है जो हरेक को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। दादी जानकी को देखे, हरेक दादियों को हम देखते हैं तो कितनी क्वालिटी लाइफ है उनकी, उनके अंदर से निरंतर कभी किसी के बारे में पर चिंतन का ख्याल तक नहीं, संकल्प तक नहीं, इतनी शुभ भावना हर आत्मा के प्रति, हर ब्राह्मण के प्रति। दादी हमेशा जैसे कोई भी जाता है, दादी जानकी के अंदर यही रहता है, कोई खाली हाथ नहीं जाए, कुछ न कुछ उसको ज्ञान रत्नों का दान करूं, यही भावना रहती है। तो इतनी सुंदर क्वालिटी उन्होंने अपने जीवन की बनाई है, जो आज ऐसे मैग्नेटिक पर्सनालिटीज हो गए हैं, जो हरेक ब्राह्मण को, इतने लाखों ब्राह्मण को जैसे खींचते हैं, चाहे दूर बैठे भी है, नजदीक है तो भी जैसे हरेक को आकर्षण करते हैं, खींचते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन की क्वालिटी ऐसे बनाएं। तो ये फर्स्ट जन्म की अगर क्वालिटी ऐसी होंगी तो आगे सारे हमारे 84 जन्म कैसे होंगे उसको भी हम निर्धारित कर ले यहाँ से ही। तो इसीलिए जैसी करनी वैसी भरनी जो दुनिया में भी कहा गया है, तो वो कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। अगर यहाँ उसको तकलीफ नहीं हुई तो आगे बहुत ज्यादा उसका हिसाब, एक का पदम गुना वाला हिसाब है। इसीलिए उस बात को अच्छी तरह से समझ लो और उसको समझ करके चलो जीवन के अंदर। एक बार की बात याद आती है कि बड़ी दादी जी, जब प्रकाशमणि दादी जी थे, तो बाबा से कहा कि कई जगह चोरियां होती है, तो क्या ऐसी विधि अपनाएं जो चोरियां ना हो, यहाँ मधुबन में चोरियां होती है। उस समय बाबा ने कहा, आप निश्चिंत रहो, उसका हिसाब बाप के पास है। और जब बाबा ने ये बात कही कि उसका हिसाब बाप के पास है, तो वो धर्मराज कैसे हिसाब रखेगा उसका, एक छोटी सी चोरी करने वाले का हिसाब क्या होगा। यहाँ वो छोटी सी चीज को ले लेता है, लेकिन उसका सुख अगर भोग भी लिया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया देखा ये सोच करके, लेकिन उसका हिसाब बाप के पास है। और वो हिसाब चुकतु करने का समय आएगा, वो कर्म, छोटा सा कर्म भी। इसीलिए बाबा ने कहा था, कोई भी छोटी कमजोरी को भी ये मत समझो कि ये छोटी सी बात है, लेकिन उसका हिसाब जिस तरह से भोगना पड़ेगा, वो बहुत कड़े रूप से भोगना होगा। इसलिए ये कर्मों की गुई गति को अच्छी तरह से समझते हुए चलो। तो ये बाबा ने उस वक्त बड़ी दादी जी से कहा, तुम निश्चिंत रहो, उसका हिसाब बाप के पास है और बाप उसको देख लेगा। तो बाप उसको कैसे देखेगा, जब धर्मराज बनेगा तब देखेगा, या तो फिर द्वापर युग के बाद देखेगा। तो इसलिए ये हिसाब को समझते हुए चलो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।